श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद भागवत के सत्संग में आपका स्वागत है। श्रीमद भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में पृथु वंश में प्राचीन बरहित के 10 पुत्र प्रजेताओं को भगवान शंकर ने जो गीत सुनाया है रुद्र गीत, इस अध्याय का नाम है रुद्र गीत जो भगवान शंकर ने प्रजेताओं को सुनाया है। और जो अब श्लोक 12 जिसके ऊपर आज चर्चा होगी, ये प्रचेताओं के जन्म से पहले प्राचीन बरहित के विवाह का प्रसंग चल रहा है। तो प्राचीन बरहित, बरहित उसका नाम था, लेकिन इतने उसने यज्ञ किए कि प्राची दिशा में कुश घास इतना बिखर गया कि पूरी धरती उससे ढक जाए, तो बरहिस को प्राचीन बरहिस्त के नाम से जाना जाने लगा। बहुत कर्मठ राजा थे। सोन का विवाह समुद्र की पुत्री शतद्रुति के साथ हुआ। अब समुद्र की पुत्री कैसे होगी, और प्रचेताओं का विवाह वन कन्या से होगा, फॉरेस्ट की लड़की से होगा। पिताजी समुद्र की पुत्री से परने विवाह हुआ पाणी ग्रहण, और पुत्र वन कन्या के साथ विवाह किया। तब हमारे आचार्य गण लिखते हैं कि जैसे पृथ्वी इसका भी देवी के रूप में रूप है, आदि देविक जब गाय का रूप धारण कर लेती है, ऐसे पृथ्वी आध्यात्मिक रूप में विष्णु पत्नी है। जैसे गंगा जब बहती है तो जल दिखता है, बहते वाली नदी दिखती है, लेकिन देवी के रूप में गंगा देवी है जो विषम की माता है। ऐसे समुद्र भी देखने के तो खारे पानी का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन उसका भी एक अधिपति देवता है समुद्र देव। समुद्र का अर्थ पता है क्या होता है, समुद्र, मुद्राओं के साथ, जिसके पेट में बहुत बड़ा रत्नों का खजाना हो उसको कहते हैं समुद्र। समुद्र, मुद्रा का मतलब समुद्र के गहराई में क्या होता है, मोती होते हैं, तो जो रत्नों का खजाना हो उसको समुद्र कहते हैं समुद्र। और समुद्र के व्यक्ति रूप का दर्शन रामायण में जब शांत भगवान रामचंद्र समुद्र नाश्ता नहीं देता है प्रार्थना से और धनुष मार उठाते हैं, तो साक्षात समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा होता है और प्रार्थना करता है, तो समुद्र वहाँ पुरुष के रूप में प्रकट होता है, तो वो समुद्र का देव रूप है समुद्र देव। ऐसे वन कन्या, वो भी वनस्पतियों की अधिष्ठात्री देव की को, देवी को वन कन्या कहते हैं। अभी हम क्या कहते हैं, ब्रजेश्वरी। राधा को क्या कहते हैं, वृंदावन की ईश्वरी। तो वृंदा तो वन है, तो उसकी ईश्वरी कौन है, राधा। तो राधा ये सारी ब्रज की ईश्वरी है, तो ऐसे सारे वन की एक कन्या है, उसका नाम है वन कन्या। ऐसे समुद्र एक पुरुष है और उसकी पुत्री है, उसका नाम है शतद्रुति। शतद्रुति का मतलब है जो बहुत बड़ी विख्यात हो, मोस्ट पॉपुलर। वैसे समुद्र पुत्री का नाम अर्थ में आता है समुद्र पुत्री, शुद्ध द्रुति मतलब समुद्र पुत्री, पुत्री जो बहुत बड़ी विख्यात हो, और उसका विवाह हो रहा है प्राचीन बरहित के साथ। तो पूर्व काल में ऐसे लगता है कि राजाओं का विवाह देव कन्याओं से हुआ करता था, जैसे गंगा की पुत्री, गंगा के साथ शांतनु का विवाह होना, तो ऐसे पूर्व काल में ऐसे देवताओं के संतान का विवाह धरती के ऊपर आते थे तो राजाओं के साथ होता था, ऐसा इसमें देखने को मिलता है। सो समुद्र की पुत्री शतद्रुति का विवाह प्राचीन बरहित के साथ होने के समय जो विवाह मंडप में यज्ञ हो रहा था, उस समय अग्निदेव शतद्रुति की सुंदरता के ऊपर मुग्ध हो गए। ये तो कल का श्लोक था। आज के श्लोक में है कि जो अन्य लोग विवाह में आए थे वो भी उस वक्त शतद्रुति के सुंदरता, चारु दर्शन जो उसका था, अलंकृत सुंदर थी, उसको देखकर, देखने को तो केवल उनको उसके चरणों में जो निपुर थे उनका जो रुनझुन झुन रुनझुन रुनझुन का जो ध्वनि हो रही थी, उस ध्वनि से भी वो बहुत आकर्षित हो गए, मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। तो ये श्लोक का आज का भाव है, लेकिन इसमें पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और पहला शब्द है विबुद्ध। तो बहुत विबुद्ध का मतलब विशेष बुद्धिमान, सामान्य बुद्धिमान नहीं, विशेष बुद्धिमान। विशेष बुद्धिमान का क्या हाल होता है ये देख लीजिए, फिर विशेष बुद्धिमान होना ठीक है कि भक्त होना ठीक है ये आप निर्णय कर लेना, ठीक है। तो आइए श्लोक का अब आवृत्ति कीजिए। विदुतासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरो ग्राह विजिता सूर्यया दीक्षो कवण्यन्त्येव निपुरैः। विबुद्धासुर गंधर्व मुनि सिद्ध नरो ग्राह विदिता सूर्यया दीक्षो कणवन्त्येव निपुरैः। विबुद्धा सूर्य गंधर्व मुनि सिद्ध नरोर्गाः विजिता सूर्यया दीक्षो कवणन्त्येव निपुरैः। विशेष बुद्धिमान, तो ये जितने अभी नाम आएंगे ये सब विशेष बुद्धिमान है। असुराह असुर, असुर कौन होते हैं? असुर जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, जो न मिलाए वो असुर। भगवान कहे ऐसे करो, बोले हाँ वो है सुर, मतलब देवता। भगवान कहे ऐसे करो, बोले ऐसे नहीं करूंगा, वो है असुर। एक सुर एक असुर। गंधर्व तो गंधर्व कौन है? गंधर्व लोग के, ये गंधर्व बहुत सुंदर भी होते हैं और अच्छा गाते भी हैं, सुंदर भी बहुत होते हैं अच्छा गाते हैं। मुनि का मतलब मुनि मननशील। अब मुनि के कुछ मुनियों के नाम बताओ। नारद मुनि, व्यास मुनि, हाँ कपिल मुनि। अब देखो ये मुनि का मतलब इतने बड़े महान लोग, अब ये नहीं लेकिन ऐसे मुनि ऐसे को कहते हैं। तो मुनि, मुनि के बाद क्या है? सिद्ध, सिद्ध लोक। एक सिद्ध लोक भी है जहां सिद्ध लोक रहते हैं, सिद्ध चारण। सिद्ध भगवान का गुणगान करते हैं और चारण जो है वो राजाओं का गुणगान करते हैं। सिद्ध चारण इनका काम है गान करना, और ये भी देवताओं की श्रेणी में आते हैं, उन देवताओं के संग होते हैं सिद्ध। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल, जो सिद्धों में भगवान कहते हैं मैं कपिल हूं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धानाम कपिलो अस्मि। तो सिद्ध भी उच्च कोटि के महात्मा है। नर, उसके बाद नर का मतलब मानव, मानव समाज के मतलब राजा महाराजा लोग, नरपति राजा को बोलते हैं। उर्गा कहते हैं नागों को, नाग लोक के रहने वाले उर्गा अथवा नाग लोक के अधिपति। फिर नागों की भी कन्याएं होती हैं, उनका भी विवाह होता है। अभी भी नागालैंड तो यहां है ना, वो सब तो ना जो जगह का नाम होता है वहां के रहने वाले को वही कहे, वहां कौन रहते, नाग रहते हैं। नागों के नाम है, उनके पत्नियों के नाम है। अब इतने तो नाम हो गए, इन सबको को, इन सबको कहा ये विशेष सब बुद्धिमान है। ये सब क्या किया था? ये सब आए थे, कहां आए थे? प्राचीन बरहित के विवाह में आए थे। विजिता का मतलब है जीते गए। ये जीते गए, जो आदमी जीत के आता है उसको क्या पहनाते हैं? इसका मतलब हार गए। जीतने वाले को हार पहनाते हैं। अरे वाया है, जीत के पहना हो हार। विजिता का मतलब उस शतदुर्ति को देख के ये उसके सुंदरता से जीते गए, उसकी सुंदरता से जीते गए। जीते गए का मतलब हार गए, उसके द्वारा जीते गए मतलब ये हार गए, इसका मतलब मोहित हो गए। उनको अपनी शुद्ध बुद्ध खो गई, उनको जो पहला शब्द है विबुद्ध, उनकी बुद्धि हिल गई। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो उसकी बुद्धि असल में कुंठित हो गई, वो शतदुर्ति की सुंदरता देखकर विमोहित हो गए। तो यहां शतदुर्ति कहां है? सूर्य या दिक्षु। वैसे सूर्य या दिक्षु का वैसे अर्थ सामान्य क्या होना चाहिए? जब सूर्य उगता है तो सब दिशाएं अपने आप में प्रकाशित हो जाती हैं। तो ये उपमा दी गई है, उस वक्त शतदुर्ति की सुंदरता सब दिशाओं को प्रकाश कर रही थी। तो शतदुर्ति का मतलब सूर्य का मतलब शतदुर्ति और दिक्षु का मतलब दिशाएं। सारी दिशाएं उस वधु के श्रृंगार और अलंकार से दीप्यमान प्रकाशमान हो रही थी। इतने अलंकार पहने जाते हैं, फिर अग्नि बीच में अग्नि जल रही है तो उसके जो चमक निकल रही थी वो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। और तो ये सब लोग उस प्रकाश को देखा तो उनके मन में आया कि इसको देखें, तो देखने में तो उनको कुछ नहीं आया, केवल क्यों नहीं देखने में आया, क्योंकि वो इतनी सजी धजी होती है कि उसका थोड़ा सा मुख आजकल तो खुला होता है, पुराने जमाने वो भी बंद करके रखते थे, केवल उनका पति ही उसका मुख देख सकता था, ये पुरानी मर्यादाएं थी। अभी भी हमारे यहाँ विवाह होते हैं जो समाज में, तो कन्या का मुंह ढका होता है, सिर्फ जब सिंदूर लगाता है पति, सिंदूर का मतलब लगाने को क्या बोलते हैं, उस क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, जीवन भर मांगती रहेगी। एक बार आपने मांग भरी नहीं, अब मांग चालू और ये खत्म होने वाली नहीं है। तो सावधानी से मांग भरनी चाहिए ऐसा नहीं। तो केवल जब पति मांग भरता था तभी मुख खुलता था, अभी ये मूर्खता मुंह खोलने की आ गई, पहले ऐसे नहीं था। अभी भी जो पुराने लोग हैं राजस्थान में, हमारे विवाह में मुख नहीं खुलता है, अभी तक नहीं है। हो सकता है अभी ये बुराई आ गई हो, लेकिन पहले नहीं थी, इसलिए इसमें दिखता है कि वो मुख, देखो अगर कुछ दिखता तो मुख ही देखते ना, लेकिन मुख नहीं दिखा उनको, कुछ भी नहीं दिखा, तो केवल उनको खुले पांव और पांव में बंधे हुए निपुर रही, निपुर जो है उनका कवण कणमतई, उनका जो झुन रुम झुन था वही सुनाई दिया, दिखा कुछ नहीं, केवल जो निपुर थे उनके पायल जो थी उसकी आवाज का रुनझुन सुनाई दिया, उससे ये सारे मोहित हो गए। देखा नहीं, देखा होता तो क्या होता, केवल रुनझुन से मूर्त हो गए, मूर्छित हो गए। तो इससे इस श्लोक से ये सिद्धांत स्थापित होता है कि विवाह में, प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि विवाह में वधु को बहुत सुंदर सजाया जाता है, इसलिए कि पति देख के उसमें आकर्षित हो जाए और जीवन भर उसका निर्वाह करने का भार उठा ले, उसको खुला नहीं रखेंगे, सभी उसको देख के आकर्षित हो, ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक से सीधा ये दिख रहा है, ये तो बड़े सावधान थे, उसका मुख खुला नहीं रखता, लगा था केवल उन्होंने घंटी ही सुनी तो उनकी घंटी बजी। तो पूरा देखने वाले तो फिर झगड़ा हो जाता था ना, पहले तो इसलिए तो क्षत्रिय एक दूसरे को उठा के जाते थे बहुत बार, इसलिए आज भी जो विवाह में वर के साथ जाता है ना, उसको यहाँ वो एक कटारी दे देते हैं, वो तलवार खंजर साथ उठा के जाता है, कोई आए तो उससे बचा लिया जाए, नहीं तो उसको जरूरत क्या है कटारी की। देखा है जो वर के साथ एक होता है, ये अभी भी रसम के अंदर है, होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, उसके साथ उसकी सुरक्षा का व्यवस्था की जाती है कि ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, इसलिए उसको खुला नहीं होना चाहिए। ये एक संत ऐसे कहते थे, जो आटे का दीप होता है ना, आटे का दिया बनाते हैं ना कभी, तो आटे का दिया आप अंदर रखेंगे तो चूहा खा जाएगा, बाहर रखेंगे तो कौवा खा जाएगा, ऐसे है कि नहीं, आटे का दिया रख। वो संत कहता था ये स्त्री बिचारी आटे का दिया है, इसको सुरक्षा में नहीं रखोगे तो चूहा क्या कौवा क्या कुछ भी सब देखना शुरू कर देंगे, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए तो ये इसमें दिखता है कि उसका मुख नहीं दिख रहा था, मुख का वर्णन नहीं है ना भाई, आदमी किसी को सुंदरता तो मुख में देखनी चाहिए ना, मुख की बात क्यों नहीं कर रहे, निपुणों की बात क्यों कर रहे। इसका मतलब कि विवाह में कुछ नियम हुआ करते थे पहले, वो सब अब समाप्त हो गए। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक का हम अब अनुवाद पढ़ते हैं। जब शुद्ध दुर्ति का इस तरह विवाह हो रहा था तो असुर गंधर्व लोक के वासी बड़े बड़े साधु मुनि एवं सिद्ध लोग पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उसके निपुरों के झुनकार से मोहित हो रहे थे। ठीक है, श्लोक अर्थ समझ में आ रहा है? अक्षर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनिए। सामान्य रूप से कम आयु में विवाह हो जाने पर एक संतान को जन्म देने के पश्चात ही अधिक सुंदर हो जाती है स्त्री। पहले कम आयु शब्द लिखा है, इसलिए एक जगह श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि पहले जमाने में लड़के लड़कियों की जो संबंध है वो छोटी आयु में पेरेंट्स कर देते थे, मेरी लड़की है इसका लड़का है, हम बड़े होंगे तो विवाह कराएंगे। बोले इसका लाभ क्या होता था? इसका लाभ कि ये होता था, लड़की बड़ी होती थी उसको मालूम है मेरा विवाह यहां होना, तो वो अन्य लड़कों की ओर देखने देख के मन को दूषित नहीं करती थी, और लड़के को मालूम था मेरी होने वाली यही पत्नी है, तो वो भी जगह जगह लड़कियों को नहीं ढूंढता था। तो जो एक मानसिक दूषितता होती है विवाह से पहले इधर उधर भटने भटकने की, वो उसमें नहीं होती है। ये पुराने जमाने में ऐसे होता था। तो प्रभुपाद ने कहीं ये शिक्षा दी कि बचपन में ही विवाह एक उसमें बहुत बड़ी सेफ्टी होती थी। ये पुराने जमाने के विवाह ऐसे थे, लड़की ने लड़के को देखा है ऐसा कहीं वर्णन होता नहीं था। अब कर पहले विवाह इस धरती के ऊपर किसका हुआ? करदम और देवहूति का। अब करदम उन्हें ढूंढने नहीं गए, लड़कियां थी नहीं, ढूंढेगा क्या उस वक्त? कोई थी नहीं, वो तो बेचारा तपस्या कर रहा था, और भगवान को ही कहा कि मेरे को विवाह करा दो, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा है तो आप ही विवाह का व्यवस्था कर दो, तो भगवान ही पिता है सबके, तो भगवान ने कहा निश्चित हो जाओ। अब देवहूति को लेके मनु और शत्रुपा स्वयं आए और कहा कि ये कन्या हम आपको देना चाहते हैं। न कन्या लड़का ढूंढने गई, न लड़का कन्या ढूंढने गया, पिताजी ने लाके कन्या का कन्यादान कर दिया। तो ये एक पुराने जो जो वैदिक सिस्टम का विवाह है वो बड़े लोग करते थे, वहां भगवान विष्णु ने कहा या मनु जी अपनी पुत्री को ले आए, तो ये विवाह चलने वाले होते थे, टिकाऊ, ये टिकाऊ विवाह थे। और अभी वाले जो विवाह है इसका क्या हाल है भगवान जाने, ये इसको विवाह कहा जाए या कुछ और कहा जाए ये हमको समझ में नहीं आते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, पहले माँ का जन्म होता है कि बेटे का? पहले माँ का होता है बेटे का? पहले माँ का होता है। अरे बेटा नहीं होगा तो माँ कैसे बनेगी? जब बच्चा होगा तभी माँ बनेगी ना, नहीं तो माँ कैसे बनेगी? जब माँ किसी को कहने के लिए बेटा होना जरूरी है, बच्चा होना जरूरी है, बच्चा होगा तब माँ बनेगी, नहीं तो माँ नहीं बन सकती। जो वैदिक संस्कृति में सबसे पूजित स्त्री का रूप है वो माँ का रूप है, मातृ देवो भव, माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है। कन्याओं की भी पूजा होती है लेकिन माँ का स्थान बहुत ऊपर का है। असल में वैदिक संस्कृति में माँ जो है वो पूजित है, और इस धरती के ऊपर जो भी राजा महाराजा आया, ऋषि मुनि आया, देवता भी आया, तो किसी माँ ने अपनी गोद में उसको पाला और अपने स्तन का दूध पिलाया है। कोई भी बड़ा आदमी बगैर माँ के इस दुनिया में नहीं आया, कोई भी ऋषि मुनि बगैर माँ के नहीं आया। तपस्वी भगवान ने अवतार नारायण का लिया तो मूर्ति माँ का और धर्म के पुत्र के रूप में आए। तो माँ बहुत बड़ी सम्मानित और बहुत बड़ी वैदिक संस्कृति में पूजित व्यक्तित्व है। तो जैसे ही स्त्री मां हो जाती है, प्रभुपाद लिखते हैं, वो अधिक सुंदर हो जाती है। यह है वैदिक परिभाषा। और आधुनिक परिभाषा है कि नहीं, बच्चे का जन्म हो गया तो सुंदरता समाप्त हो जाएगी, मूर्खता है। ये मूर्खता इतनी प्रचलित है इसलिए बच्चों का जन्म ही बंद कर दिया है। ये बहुत बड़ा घिनौना धर्म, इस धरती के ऊपर जो घिनौना पाप हो रहा है वो एक तो बच्चों का न पैदा करना और एक गाय की हत्या, ये दो ऐसे घिनौने पाप इस धरती के ऊपर हो रहे हैं, भ्रूण हत्या और गौ हत्या, कि संसार में सुख शांति हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। जिससे उत्तम पद प्राप्त हो माता का पूजन है, उस काम करने से ही आधुनिक युग की विवाहित स्त्रियां किनारा करती है, नहीं करना चाहती। यहां जो पहली लाइन श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे ही पहले पुत्र को जन्म देती है अधिक सुंदर हो जाती है। संतान को जन्म देना नारी का प्राकृतिक कार्य है। असल में कुछ बहुत भले जीव आत्माएं प्रतीक्षा कर रही हैं कि किसी साधु कुल में, किसी भक्त कुल में मेरे को जन्म मिले। अगर उसको रोका जाता है तो ये हिंसा हो जाती है। असल में विवाहित जीवन का पहला सिद्धांत यह है कि विवाह क्यों करते हैं, विवाह की आवश्यकता क्या है, तो सीधा सा उसका उत्तर है संतान की प्राप्ति के लिए। वैदिक विवाह परंपराओं की रक्षा के लिए है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेनी को कंटिन्यूटी करने के लिए है, कि हमारा कुल परंपराएं चलती रहे, धर्म की जो हमारी कुल परंपरा है वो चलती रहे, इसके लिए विवाह करना है, नहीं तो विवाह करने का कोई मतलब नहीं। भोग प्रदान विवाह भारत संस्कृति का नहीं है, भोग प्रदान विवाह पाश्चात्य संस्कृति का है। और परंपरा की रक्षा, कुल परंपराओं की रक्षा के लिए भारतीय विवाह की ऋषियों ने यज्ञ के रूप में स्थापना की है। विवाह को संस्कार कहा है, 16 संस्कारों में विवाह संस्कार एक ही बच गया है, वो भी अब समाप्त हो गया, कोर्ट में चला गया, बाकी सिर्फ मृत्यु संस्कार बचा है। बाकी 16 तक का सिर्फ एक मृत्यु बचा है, वो भी अभी इलेक्ट्रिसिटी में चला गया, उसमें भी आग लगाने वाले नहीं रह गए। सारे संस्कारों का जो है हमने बहिष्कार कर दिया है, खत्म ही हो गए संस्कार। तो विवाह संस्कार है। प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य भगवद गीता के 18वें अध्याय में है, जहां लिखा है यज्ञ कर्म दान यज्ञ तप कर्म न त्याजेत। वहां श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं सन्यासी होते हुए अपने शिष्यों का विवाह कराता हूं, लोग आलोचना करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ कर्म को नहीं त्याजना चाहिए, तो विवाह तो यज्ञ है ना, तो मैं कैसे इसको त्याजूं। तो लिखित में प्रभुपाद जी ने वहां इस संस्कार को, वैसे पति का अर्थ क्या होता है, पात्यते इति पति, जो रक्षा करे, जो रक्षा करे उसको पति बोलते हैं, जो रक्षा करे उसको पति कहते। और पत्नी का अर्थ भी है कि प्रभुपाद जी ने लिखा है कि पत्नी पुरुष के लिए दुर्ग है, किला है सुरक्षा का, उसको पतन से बचाती है, जो पतन से बचाए वो पत्नी, जो पतन से बचाए वो पत्नी। असल में जो शब्दों का अर्थ है वो ये है, ये इसका सही अर्थ है, ये कोई मैं अपना टीका नहीं कर रहा हूं, मेरी टीका अलग होती है। मेरी टीका ये है कि पति चाय की पति है आजकल के, जिसको घोल के पत्नियां फेंक देती है। तो मेरी टीका तो पति की बिचारे की ये है, चाय की पति की तरह एक दफा यूज किया फेंक दिया। क्या करो, वो भी पति ही है, कौन से पति है, तो अपने आप को संभालो, जो रक्षा करे वो। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र का जो मिशन स्टेटमेंट है, जो उनका सिद्धांत है किम पुरुष लोक में, हनुमान जी के द्वारा निर्धारित, उसमें भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं अगर पुरुष पत्नी का हाथ थामता है तो उसकी रक्षा करने के लिए सात समुद्र जाना पड़े, रावण से लड़ना पड़े, तब भी उसकी रक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। अगर इसकी इतनी उसमें साहस नहीं है तो पत्नी न ग्रहण करे। वहां ये पहला शिक्षा है, मृत्यु शिक्षा। भगवान का अवतार केवल असुरों के वध के लिए नहीं था, लेकिन मानव समाज को शिक्षा देने के लिए था। वहां लिखा ऐसे, और शिक्षा क्या देनी थी? अगर पति पत्नी का हाथ ग्रहण करता है तो उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार रखे, चाहे रावण से लड़ना पड़े या समुद्र पार जाना पड़े। और नीचे लिखा है, अगर ये करने में समर्थ नहीं है तो अच्छा है ब्रह्मचारी रहे, झमेले में पड़े ही नहीं, क्योंकि इसमें संकट आएंगे। अगर संकट से जूझना नहीं चाहे तो साधु बन के रह जाए, अच्छा। ये दो उसके अर्थ हैं। तो स्त्री असल में उच्च कुल, देखो ये सब साधुओं का कुल है, ये तो दुरु महाराज का वंश चल रहा है, जो भगवान के भक्त हैं, ये स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद का वंश चल रहा है। तो इसके अंदर आने वाले कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सारे ही बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, कर्मठ है। तो ये सिद्धांत स्थापित होता है कि किसी अच्छे कुल में जन्म के लिए कुछ आत्माएं प्रतीक्षा करती हैं, कम से कम। इससे हम ये निर्णय बता रहे, कम से कम जो वैष्णव दीक्षित विवाहित है उनको संतान उत्पत्ति करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी आत्माएं इस धरती पे आना चाहती है, किसी सत्पुरुष के घर में, किसी वैष्णव के घर में आना चाहती है, वो उसमें अगर नहीं उत्पत्ति करता है तो ये ठीक नहीं। और वैसे ये तो हमारा बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि अगर आप नहीं बच्चा एक ही पैदा करेंगे तो हम भक्त किसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे तो आप रोएंगे, और दो चार होंगे तो एक दो दे दो, जान छूटी आपकी और हमारा काम हो गया। हमको भक्त चाहिए, और आपको जब पाले नहीं जाते तो कम से कम कोई साधु बना के दे तो दो। तो इसलिए ये स्त्री को भगवान ने, वैसे स्त्री शब्द का अर्थ क्या है? जो विस्तार करे संसार में, जो विस्तार करे उसको स्त्री करते हैं, एक से दो बना देती है, स्त्री विस्तार करती है। और दूसरा स्त्री शब्द का अर्थ है जो सेतु बने, दो कुलों के बीच में सेतु बनती है, दो कुलों को आपस में मिलाती है। तो सेतु का काम भी स्त्री करती है, और स्त्री विस्तार भी करती है। और जहां स्त्री धर्म का वर्णन भीष्म पितामह ने किया है, उसमें श्री प्रभुपाद का जी का तात्पर्य है, हर पुरुष के पुरुषार्थ में स्त्री का हाथ है। इसका अर्थ है स्त्री पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी प्रेरणा से इस धरती के ऊपर बहुत बहुत दिव्य कार्य हुए हैं। फिर नीचे लिखा है, स्त्री से भी महान स्त्री का गुण है लज्जा। अगर उस लज्जा में कटौती हो गई तो स्त्री संसार के अंदर बहुत बड़े उपद्रव का कारण बनेगी। पुरुष से स्त्री शक्तिशाली है, लेकिन स्त्री की शक्ति का सार है उसकी लज्जा। वो अगर उसकी नहीं रह गई तो स्त्री धरती के ऊपर बहुत बड़ा उपद्रव का कारण बनेगी। पांच पांडवों का जब द्रौपदी के साथ विवाह हो गया तो एक दिन नारद जी आए और आके एक कथा बताई पांचों भाइयों को, और उस कथा में बताया कि दो असुर ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान लेके आए कि कोई हमको मारे नहीं। बोला, आखिर भाई मरना तो पड़ेगा, क्या रास्ता है? बोला, केवल आप एक दूसरे को मार सकते हो, दूसरा आपको कोई नहीं मार सकता। अब ये इतने शक्तिशाली हो गए तो मरेंगे नहीं, किसी को सबको मालूम है, बड़ी परेशानी हो गई, करें क्या इसका। और ये दोनों ऐसे आपस में जुड़े हुए थे कि उठें भी साथ, खाएं भी साथ, बोलें भी, सोएं भी साथ, मतलब एक दूसरे से अलग हो ही नहीं। ब्रह्मा जी परेशान हो गया कि करा कि भाई इतने सारे परेशान हो गए कि इसका इन इनको मरेंगे कैसे, जान कैसे छूटी, इन दो असुरों से छूटे। नाम उसका मुझे याद नहीं है, किसी को याद है तो बोल दे आजा। हाँ क्या शुंभर, हाँ शुंभ निशुंभ, शुंभ निशुंभ। और तब ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर ऐसी अद्भुत नारी को बना के दोनों के सामने भेजा, और वो दोनों एक छोटा एक बड़ा। छोटा कहता है मैंने देखी है पहले, तुम्हारी तो ये भाभी लगे, तुम्हारी तो बहू लगे, हाथ क्यों देख रहे, है चुप मैंने पहले देखा है। वो ऐसे आपस में लड़े एक दूसरे को मार दिया। तब नारद जी कहते हैं आप पांच पांडव एक द्रौपदी से विवाह किया है, आप कोई नेम बना लो, नहीं तो ये उदाहरण मैंने ऐसे दिया है कि आपका जो आपस में भाइयों का प्रेम है वो इसके कारण कहीं बिगड़ न जाए। तब उन्होंने कहा दो साल तक एक के साथ रहेगी द्रौपदी, और जो उसके बीच में गया भी तो 12 साल ब्रह्मचारी होके वनवास में जाए, ये नेम बनाया। तो कहना है कि झगड़े का कारण भी अगर सुरक्षित स्त्री नहीं है तो बहुत बड़ा झगड़े का कारण हो जाती है। इस दुनिया में जितने भी झगड़े हुए उसके पीछे जर जन जमीन, जर का मतलब धर्म, जन का मतलब स्त्री और जमीन का मतलब धरती, ये तीनों के ऊपर झगड़े हुए दुनिया में। जो भी झगड़े हुए स्त्री के ऊपर, धरती के ऊपर और धन के ऊपर हुए। कंचन कामनी कीर्ति ये तीन ऐसे भयानक चीजें हैं जो सबको भ्रमित कर देती हैं। कंचन धन, कामनी स्त्री और कीर्ति, ये जो तीन त्यागे उसको सन्यासी बोलते हैं, जिसके अंदर न लोकेश ना हो कि लोग मेरी मेहमा गाए, नहीं लोकेश ना, कीर्ति की आवश्यकता नहीं, वित्तेश ना धन की आवश्यकता, मुझे वित्त नहीं चाहिए, शिष्येषणा पुत्रेषणा मेरा शिष्य हो मेरा पुत्र ये नहीं हो जिसमें, वो सन्यासी माना जाता है। तीन ईशाओं से मुक्त जो हो उसको सन्यासी माना जाता है। तो यहां स्त्री की सुंदरता पुत्रों के जन्म देने, संतान के जन्म देने, वो संतान के इसी कार्य के लिए भगवान ने बनाया है। इस प्रकार एक के बाद एक संतान उत्पन्न करने करके वो अधिक सुंदर होती जाती है। अब ये है श्री प्रभुपाद का वैदिक निर्णय स्त्री की सुंदरता के विषय में, अधिक संतान अधिक सुंदरता। किंतु शतदुती इतनी सुंदर थी कि उसने अपने विवाह उत्सव में ही सारे संसार को मोह लिया। दरअसल उसने अपने निपुरों की झुंकार से ही बड़े बड़े विद्वानों तथा महान देवताओं को आकृष्ट कर लिया। इससे सूचित होता है कि सभी देवता उसका सौंदर्य देखना चाह रहे थे, किंतु वस्त्र आभूषण से ढकी होने के कारण वे उसे ठीक से देख नहीं पा रहे थे। क्योंकि वे उनके पांव ही देख रहे थे, अतः निपुरों की झुनकार सुनकर ही वे मोहित हो रहे थे। उन्हें उसका पूरा सौंदर्य देखने की आवश्यकता न थी। कभी कभी मनुष्य स्त्रियों की चूड़ियों की खनक, निपुरों की झुनकार अथवा साड़ी देखकर ही काम मोहित हो उठता है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री माया का पूर्ण रूप है। यद्यपि विश्वामित्र मुनि आंखें बंद किए योग अभ्यास में लीन थे, किंतु जब उन्होंने मेनका की चूड़ियों की खनक सुनी तो उनका दिव्य ध्यान टूट गया। इस प्रकार विश्वामित्र मेनका के चुंगल में आ गए और उससे एक संतान उत्पन्न हुई जो शकुंतला नाम से जगत प्रसिद्ध हुई। निष्कर्ष ये है कि कोई भी अपने को नारी आकर्षण से नहीं बचा सकता, भले ही वो महान देवता अथवा उच्च लोक का वासी क्यों न हो। केवल भगवत भक्त जो कृष्ण पर आसक्त है स्त्री के आकर्षण से बच पाता है। एक बार कृष्ण द्वारा आकर्षित होने पर संसार की माया उसे आकर्षित नहीं कर सकती। तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब क्या तात्पर्य निकला, आज की कथा से हमको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? एक बात सीखनी चाहिए सीधी, चाहे देवता हो, जब तक मानव जीता है तब तक वो आकर्षित जरूर होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि आकर्षण की चीजें एक दूसरे से दूर रखी जाए, उसको कम किया जाए, ऐसा वातावरण कम किया जाए। इसलिए आजकल के विवाहों में बाद में जब ऐसी स्थितियां होने लगी ना, तो विवाहों के अंदर सिर्फ स्त्रियां अभी बैठती हैं, जहां विवाह की बेटी होती है माता पिता और स्त्रियां होती है, वहां पुरुष होते ही नहीं। आजकल ये बंद कर दिया पुरुषों का, आधुनिक युग में वैदिक काल में बाद में विवाह में सिर्फ स्त्रियां होती है, वहां पुरुष नहीं होते। अभी जो व्यवस्था है, अभी फिर बाजार में आ गया विवाह तो परेशानी हो गई कि दुनिया सारी को दिखाने का नमूना हो गया, ये जरूर दुनिया के लिए नहीं था, तो अब सिर्फ वहां स्त्रियां बैठती है, तो ये आकर्षण वाला समस्या ही समाप्त हो जाती। तो ऐसी व्यवस्था करनी, इसलिए कभी बच्चों का अलग अलग बैठना होना चाहिए अलग, ये सिर्फ इसलिए जरूरी है कि दोनों, प्रभुपद की भाषा होती थी गर्ल्स आर गुड एंड बॉयज आर गुड एज लॉन्ग एज दे आर सेपरेट। जब जैसे कटे हो गए झमेला शुरू हो गया, कि अपनी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए सवाए विवाह के बाकी अपने जीवन में बचाने के काम आंखों के द्वारा देखने से जाता है। और यहां तो दिखा है केवल कानों से सुनने से भी, उनकी बात सुनने से भी हो जाता है। इसलिए ग्राम में कथा नहीं सुननी चाहिए, बाहर के बेकार का दृश्य नहीं देखना चाहिए, ये तो साधु के लिए सुरक्षा का। लेकिन अब दूसरी दृष्टि से देखें, ये भरतवंश की जननी है शकुंतला, आगे चल के जिसके अंदर पांडव हुए हैं जो भरतवंशी कहलाते हैं, ये शकुंतला का संतान है। तो विश्वामित्र ऐसे, ये तो ऋषि हैं, इनका विमोहित होने से भी संसार का हित हुआ कि संसार को पांडव मिले जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने और जिसके माध्यम से गीता धरती के ऊपर अवतरण हुई। तो ऋषियों के द्वारा भी ऐसी स्थितियां हो सकती है, लेकिन उसमें तो कोई अवगुण नहीं आगे चलता है, लेकिन सामान्य मानव ऐसे पतन की तरफ जाए तो वर्ण आशंकर पैदा हो जाते, तो संसार के अंदर उपद्रव हो जाता है। इसलिए सीधा प्रभुपाद का तात्पर्य है कि भक्त बन के भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण हो जाए, अगर कृष्ण में हमारे को सुंदरता दिख जाए जो परम सुंदर है, तो फिर संसार की सुंदरता की तरफ हमारा मन जाएगा नहीं। लेकिन कृष्ण की सुंदरता में मन लगे, उसके लिए कृष्ण की कथा और कृष्ण की सुंदरता की वार्ता सुनते ही रहना चाहिए, उसमें कभी भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वो सुनते रहेंगे तो कृष्ण में आकर्षण हो जाएगा, तो फिर संसार में आकर्षण नहीं होगा। लेकिन संसार का आकर्षण ही भगवान ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, इसलिए वो भी अपना काम दिखाएगा और हमको उसको उससे बचना भी है। इसलिए एक कवि ने कहा है, हाथ पांव बांध के तुमको पानी में डाला है और ऊपर से भगवान कहता है भीगना मत। हाथ पांव बांध के पानी में फेंका है, बोलना भीगना मत भाई, ऐसी स्थिति हमारी है, भेजा है इस संसार में, रहना इस संसार में, और फिर कहते हैं तुम माया में मत फंसना। इसके लिए एक उदाहरण के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। नाव पानी में रहने के लिए ही है ना, नाव को कहां होना चाहिए, कोई समस्या है? लेकिन पानी नाव में आ जाए तो समस्या हो जाएगी ना। अब हम संसार में हैं, कोई परेशानी नहीं है, संसार हम में आ गया तो डूब जाएंगे। संसार में रहो ऐसे जैसे नाव पानी में रहती है तो तर जाएंगे, संसार हम में आ गया, पानी नाव में आ गया तो डूब जाएंगे। पानी में रहना नाव के लिए खतरा नहीं है, लेकिन पानी नाव में आ गया, भाई नाव सूखे भी हो तो जरूरत क्या है उसकी, उसमें उसको क्या करेंगे, सूखे में नाव की जरूरत तो नहीं है, है ही पानी के लिए। तो मानव आया ही संसार में है कि संसार से बच के भगवान के पास जाए, और किसी लोक से तो जा नहीं सकता, यहीं से जाएगा। तो नाव पानी में ही हमको किनारे पे ले जाएगी, और रास्ता कोई नहीं है। तो यहां हमके अंदर संसार हम में नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले ही भगवान की भक्ति को भर देना चाहिए, भगवान की कथाओं से अंदर भर दो कि संसार के आने के लिए जगह ही नहीं बचे। इसलिए गुरुकुल में बच्चों को ऋषि लोग पहले ऐसी भगवत कथा, भगवत माँ, भक्त भगवत भाव उनके अंदर भर देते थे कि उनमें से दो चार ग्रस्त होते थे तो भी सतग्रस्त ही थे, पांच सात तो सीधे सन्यासी हो जाते थे। तो पहले से ही मसाला अंदर ऐसा भरते थे कि उनका गलत रास्ते पे जाना संभव ही नहीं था, वो पद्धति खत्म हो गई, वो शिक्षा पद्धति ही चली गई। तो अब शिक्षा जो बाहर है वो तो असल में नाव पानी में डूबी हुई है, उसको निकालना अब मुश्किल है, वो तो डूबी हुई है अंदर, निकलेगी कहां से। तो ये सिद्धांत है, संसार में रहना मुश्किल खराब नहीं है, लेकिन संसार हम में आ गया तो खतरा है। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
महाराज की जय।